आज की वाणी है 28 जून 1962। रिकॉर्ड चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। सिर्फ बच्चे नहीं बुलाते हैं, बाप भी बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान डांस अच्छा करना जानते हैं, उनों के लिए बाप भी चाहते हैं कि ये बच्चे आवे। बादल आते हैं, सागर जरूर चाहता होगा, तो सागर भी बच्चों को बुलाते हैं, बादलों को बुलाते हैं ना, आकर के रिफ्रेश होकर के जाओ। जैसे बाबा ज्ञान डांस करते हैं, तो तुम बच्चे भी ज्ञान डांस करना सीखो। रिफ्रेश होने वाले बच्चे हैं ना, तो आओ रिफ्रेश होकर के जाओ और फिर औरों को भी रिफ्रेश करो। सुन करके जाओ और दूसरों को सुनाओ। क्या सुनाओ? जो बाबा ने बोर्ड पर लिखवाया है, झूठी गीता और सच्ची गीता, इस बात पर सुनाओ। न सिर्फ गीतावादियों ने परंतु उन वेद आचार्यों आदि ने सब ने बिल्कुल झूठा बनाई दिए है। इसको गीता को झूठा बनाई दिए है, तो उनको समझाना है ये सब भक्ति मार्ग है, साधना मार्ग है। ये साधु साधना करते हैं ना, साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, जो कुछ भी करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो सब अपन को शिवो हम कहते हैं। वो भगवान अपन को कहलाए नहीं सकते हैं। अगर कोई कहें कि अंत में हम वहां जाकर के भगवान से मिलेंगे, तो भी यहां तो अपन को भगवान कह नहीं सकते। बात समझाते हैं। पहली तुम्हारी मुख्य बात है समझाने की। तुम और कितनी भी बातें करेंगे परंतु वो इतना नहीं सुनेंगे। बाबा ने समझाया है, तुम लिख दो कि तुम न सिर्फ गीता परंतु वेद शास्त्रों आदि के लिए भी लिख सकते हो। बाबा ने तो सिर्फ लिखा है मनुष्यों की बनाई हुई गीता झूठी है। मनुष्य जो गीता बनाते हैं वो बाद में बनाते हैं। गीता तो धर्मशास्त्र है ना, और आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। कोई भी धर्म पिता आते हैं तो धर्मशास्त्र बैठ थोड़े ही लिखते हैं। धर्मशास्त्र बैठ बनाते हैं क्या? वो तो आते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट सुनाते हैं, बाद में उनके शास्त्र बनाए जाते हैं। तो ये जो मनुष्यों ने गीता बनाई है ये भी झूठी गीता है। ऐसे नहीं कि दो सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, उनके बीच में बैठ करके भगवान ने गीता सुन गीता ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। तुम उन सब के लिए लिख सकते हो, ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि कोई को पता ही नहीं है ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि किस समय की यादगार है। भगवान जिस समय आया इस सृष्टि पर, उसने उस समय जो कुछ बोला है उस समय की यादगार ये वेद शास्त्र है। बरोबर वो साधना तो करते आए हैं, ऐसे भी नहीं है कोई साधना करते भगवान से मिला हो। कहते हैं ये सब शास्त्र आदि अनादि है। अगर अनादि है फिर कहते हैं व्यास ने लिखे, तो कोई ने बनाए ना, तो अनादि कैसे हुए? समझते हैं ऋषियों मुनियों ने बनाए होंगे। अभी शास्त्र आदि देवताओं ने तो नहीं बनाए, ये ऋषि मुनि भी तो सब मनुष्य हुए ना। मनुष्यों में और देवताओं में फर्क तो होता है ना। लिख दिया है कि गीता नर को नारायण बनाने वाला शास्त्र है, नर अर्जुन को नारायण और नारी द्रौपदी को नारी से लक्ष्मी बनाने वाला शास्त्र है। परंतु नर नारायण या द्रौपदी जो नारी लक्ष्मी बनती है, वो लक्ष्मी नारायण तो देवताएं थे। उन देवताओं को नरसिंह नारायण बनाने वाला तो भगवान ठहरा ना। अब ये शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं, जो शास्त्र पढ़ते ही आए हैं, मनुष्यों की मत की बनाई हुई ये शास्त्र, इनसे सदगति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देवताएं सदगति में होते हैं और मनुष्य तो उनका मन चंचल होता है, मन चलायमान होता है तो मनुष्य कहा जाता है। जिनका मन चलायमान है, चंचल है, तो सदगति कैसे करेंगे? चंचल मन से दुर्गति होगी या सदगति होगी? अगर सदगति होती तो इतने जन्मों में सदगति हो जानी चाहिए ना, फिर ये जन्म जन्मांतर क्यों पढ़ते आए हैं? ये तो पढ़ते और पढ़ाते, सुनते और सुनाते दुनिया को और ही दुर्गति में पहुंचाया है, और ही दुनिया के मनुष्यों की मेंटेलिटी नीचे गिरती जाती है। भक्ति से दुर्गति ही होती है। ये भक्ति तमोप्रधान बनाती है और भक्ति भी तमोप्रधान बननी ही है। तो ये तुम जानते हो ये भक्ति कब से शुरू होती है? कब से शुरू होती है? जब से मनुष्य द्वैतवादी बनते हैं। देवताएं थे अद्वैत, अद्वैत अर्थात किसी दूसरे को मानने वाले नहीं थे। जब से द्वैतवादी दुनिया आई, दूसरे दूसरे धर्म आए, दूसरे दूसरे राज्य आए, تپا سے یہ بھکتی شروع ہوئی. دنیا تو ان باتوں کو جانتی نہیں ہے کہ بھکتی مارگ یہ راون راج جی کب شروع ہوتا ہے اور رام راج جی کب شروع ہوتا ہے. جیسے کوئی کاریگر ہوتے ہیں تو آپ نے ہنر کو انت دینا نہیں چاہتے ہیں, کسی کو بتاویں گے نہیں, کیونکہ سمجھتے ہیں اگر یہ ہنر سیکھ جاویں گے تو ہماری تو ویلیو کم ہو جائے گی. سمجھتے ہیں کہ یہ سب سیکھ جاویں گے بنانا کرنا, تو میں جو فائدہ اپنے لیے نکالتا ہوں وہ میرے لیے فائدہ کم ہو جائے گا. ایسے کئی کاریگر ہوتے ہیں, کئی ویدیہ لوگ بھی ہوتے ہیں, حکیم بھی ہوتے ہیں, اپنی دوائی دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں. کوئی تو پھر سمجھتے ہیں کہ بل کوئی سیکھے, سیکھ کر کے فائدہ تو ایسے بھی ہوتا ہے. اب یہ شاستر تو کوئی بھی سیکھ سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہو, شاستروں سے سدگتی ہو سکتی تو پھر پڑھنے کیوں جاتے ہو؟ الگ سے پڑھائی پڑھنے کی درکار ہی نہیں, شاستر تو آگے بھی پڑھتے آئے ہیں. پرنتو جنم جنمانتر شاستر پڑھتے پڑھتے سدگتی تو کوئی کی بھی نہیں ہوتی ہے. تو سمجھانا چاہیے کہ بھارت کو و دنیا کو درگتی میں تو آنا ہی ہے. یہ بھکتی کرتے کرتے درگتی میں جاتے جاتے جڑجڑی بھوت اوستھا کو پانا ہی ہے. بدھی جڑت میں ہی ہوتی جاتی ہے. یہ سادھنا کرنے والے کیا سادھتے ہیں؟ اندریوں کو سادھنے کی کوشش کرتے ہیں, پرنتو یہ سادھنا کرنے والے کبھی بھی کوئی کی سدگتی نہیں کر سکتے. یہ خود ہی پریکٹس کرتے ہیں اندریوں کو سادھنے کی, تو دوسروں کی سدگتی کیسے کریں گے؟ سدگتی کرنے والا تو ایک ہی پرم پتا پرماتما ہے. کیوں ایک ہی ہے؟ کیونکہ ایک ہی ہے جس کو اپنی اندریاں نہیں ہوتی ہیں اور وہ کبھی اندریوں کے وسیبوت بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو سدیو ہی ابھوکتا ہے. ہاں کوئی کے تن میں پرویش کرتا ہے, جس مقرر رتھ میں پرویش کرتا ہے اس کی اندریوں کو سادھتا ہے. اس لیے شاستروں میں چتروں میں انہوں نے رتھ دکھائی دیے کہ شریر روپی رتھ میں پرویش کرتا ہوں اور اس کی اندریوں روپی گھوڑوں کو کنٹرول کرتا ہوں. گاتے بھی ہیں, وہ پتیتوں کو پاون بنانے والا ہے. گاتے تو ہیں پرنتو کون ہے وہ پتیتوں کو پاون بنانے والا یہ نہیں جانتے. اور یہ کرشن بھی تو پتیتوں کو پاون بنانے والا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کرشن کو تو بچے کے روپ میں دکھاتے ہیں. بچے کا پتیت اور پاون بننے کا کیا تعلق؟ بچے کو تو پتیت بھی نہیں کہیں گے, بچہ تو مہاتما ہوتا ہے, پاون بھی نہیں کہیں گے. کیونکہ جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پتیت پنے سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور جس کرشن کی بات کرتے ہیں کہ گیتا کا بھگوان تھا, وہ کرشن تو سولہ کلا سمپورن جو خود ہی کلاؤں میں باندھا ہوا ہے, وہ کلاتیت کیسے ہو سکتا ہے؟ پتیت پاون تو ایک ہی ہے, وہ گیان سوریہ ہے. سوریہ کو کبھی کلاؤں میں बांधा नहीं जा सकता। राम और कृष्ण तो कलाओं में बांधे हुए हैं। जो कलाओं में बांधे हुए हैं वो तो सीमा में बंध गए, और भगवान तो सीमाहीन है, सीमा से परे है। वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, और उसको कहा भी जाता है सागर। रुद्र यज्ञ भी जैसे रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ भी रचते हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ व रुद्र यज्ञ रचते हैं। सिर्फ गीता ज्ञान यज्ञ नहीं कहते हैं, रुद्र यज्ञ कहते हैं। तो वहां अनेक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। अभी थोड़ा हंगामा हुआ था, थोड़े स्टार्स थोड़े ग्रह नक्षत्र आपस में मिले थे तो बहुत यज्ञ रचे थे। वहां बहुत शास्त्र रखे थे आजू बाजू में। ये शास्त्रों ढेर के ढेर, शास्त्रों का भी मुरब्बा हो गया, समझते हैं बस ये शास्त्रों का ही ज्ञान है। इन शास्त्रों से हम जाकर के भगवान से मिलेंगे, परंतु ये तो है ही भक्ति मार्ग। क्यों? ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। शास्त्र एक ने लिखे हैं या अनेकों मनुष्यों ने लिखे हैं? अनेकों मनुष्यों के लिखे हुए हैं। ये दुर्गति के लिए शास्त्र हैं। गंगा स्नान करना, साधना करना, ये सब दुर्गति का मार्ग है। और तुम बच्चे तो अभी कंट्रास्ट में हो। तुम जानते हो राइट क्या है और रंग क्या है। अब तुम तो कुछ भी भक्ति नहीं करते, है ना? तुमने अनेकों की बात मानना बंद कर दिया है। तुम एक रास्ते पर चल पड़े हो। भक्ति के तो अनेक रास्ते हैं। तुम कहां तीर्थों आदि मंदिरों आदि ठिकानों पर जाते हैं? तुम्हारे मुख से हे भगवान, हे राम, ये निकलता भी नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? इसलिए नहीं निकलता कि तुम्हें तो मिल चुका है। 28 से 62 की वाणी का दूसरा पेज। अगर कोई ने हे राम हे भगवान कहा तो नापास हो गया। हे राम हे भगवान कब कहा जाता है? दुख में कहा जाता है या सुख में कहा जाता है? है?
दुख में।
जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे राम, कितनी बाढ़ आ गई। हे राम हे भगवान तब कहते हैं जब कोई अनर्थ हो जाता है। अब तुम्हारे लिए तो अनर्थ की कोई बात ही नहीं। तुम तो जानते हो ये सारी दुनिया खलास होने वाली है। सारी दुनिया खलास होगी और हम अपनी नई राजधानी में पहुंच जाएंगे। तो तुम्हें तो हे राम करने की दरकार नहीं है। कोई अगर हे राम हे भगवान कहता है तो तुम समझेंगे इनको ज्ञान कुछ भी है। हे शिव भी नहीं कहना चाहिए, ये भी भक्ति का उच्चारण है। क्यों? तुम्हारे लिए दुख की दुनिया है या संगम युग मौजों का युग है? तुम्हारे लिए तो संगम युग मौजों का युग है। कुछ भी हो जाए, राम में जो भी हुआ कल्याणकारी या अकल्याणकारी?
कल्याणकारी।
जो भी होता है टांग टूट गई, कल्याणकारी या कल्याणकारी? क्यों टांग टूटना कोई कल्याणकारी है? हैं? क्यों कल्याणकारी बताओ? पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब था? वो हिसाब किताब पूरा हुआ, हम हल्के हो गए। 63 जन्मों के जो कर्म बंधन हैं वो कट रहे। तो तुमको हे राम हे भगवान मुख से कुछ भी नहीं कहना, तुमको तो एक बाप को याद करना है। अपन को आत्मा समझ नहीं। कहते हैं ना, माला जपी बुद्धि से, या मुख से? माला जो जपते हैं वो मुख से जपते हैं, हाथ से जपते हैं, या बुद्धि से जपते हैं? हाथों से माला जपते हैं, मुख से राम 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 बोलते रहते हैं, तो क्या ये सच्ची माला का जाप है? अर्थ को समझते हैं? वो तो अर्थ को भी नहीं समझते। वास्तव में ये बुद्धियोग की बात है, और ये भी अंदर की बात है। क्या माला जपना, क्या अंदर की बात है? जब मनन चिंतन मंथन चलेगा तो बुद्धि में बैठेगा कौन कौन सी आत्माएं माला में किस नंबर में आने वाली। ये मंथन चलता है माने असली माया जपी, माला जपी माना मंथन चला। मुख से राम 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 कहते रहे और बुद्धि चारों तरफ दुनिया में भटकती रही, इसको तो माला जपना नहीं कहेंगे। तो ये तुम्हारी अंदर की बात है माला जपना। वो जो माला जपते हैं उसमें कोई सुख नहीं है। तुम जो मनन चिंतन मंथन में रह करके माला जपते हो उसमें बहुत सुख है। अंदर में शिव का उच्चारण भी मुख से किया तो नापास हो जाएंगे। कायदे पर चलना है। बाप का फरमान है मुझे पारलौकिक बाप को याद करो। पारलौकिक बाप को याद करो, मुझे को उच्चारण न करो। क्यों? मुझे को शिव शिव न कहो, मुख से नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? शिव तो है ना, बल बिंदी का नाम शिव है, तो हम शिव शिव कहें क्यों नहीं? क्योंकि वो तो सिर्फ बुद्धि है। वो क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। उसमें कोई कर्मों का संस्कार, अच्छे बुरे संस्कारों कर्मों का संस्कार नहीं है उस आत्मा में। मन उसका चलायमान है, वो अमन है या मन वाला है? वो तो अमन है। मन भी नहीं है और संस्कार भी नहीं है, अच्छे संस्कार भी नहीं, बुरे संस्कार भी नहीं। किसमें? शिव बाप में। वो तो सिर्फ बुद्धि ही बुद्धि है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब मन वाला भी है, बुद्धि वाला भी है और संस्कारों वाला भी कहा जाता है। तो पारलौकिक बाप को याद करो। बाप का फरमान है बच्चे बड़े होते हैं तो बाबा बाबा मुख से कहते थोड़े ही हैं। दुनिया में भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मुख से बाबा बाबा का जाप करते हैं क्या? नहीं, बुद्धि में आ जाता है ये हमारा बाबा है। तो सिर्फ कहना नहीं है, भगवान त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा स्थापना और पालना और विनाश कराते हैं, ये तो किसको सुनाने के लिए समझाया जाता है? क्या ये त्रिमूर्ति शिव है? वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। तुमको तो चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में रहता है। बाबा है स्वीट होम का रहने वाला और स्वीट राजधानी स्थापन करते हैं, तो श्वासों श्वास याद में रहने से तुम्हारे पाप कर्म बिना तुमको लाइट का ताज मिल जाएगा। तब लाइट किसे कहा जाता है? एक तो है ज्ञान की लाइट, मनन चिंतन मंथन करेंगे, बाप ने जो सुनाया उन बातों का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो ज्ञान की लाइट मिल जाएगी। दूसरी है पवित्रता का ताज। परंतु ज्ञान का चक्कर बुद्धि में जरूर फिरना चाहिए। अब मास्टर जयकै चैतन्य बीज रूप हैं, जैसे शिव बाबा ने इसमें अवतार लिया है, जिसमें अवतार लिया है वो प्रजापिता ब्रह्मा भी मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, तो हम भी अपनी दुनिया के बीज हैं। एक एक बीज में दुनिया समाई हुई है। वो कहते हैं उन स्टार्स में दुनिया समाई हुई, और हम कहते हैं ये चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, जिन एक एक आत्मा रूपी सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। शिव के साथ शिव शक्तियों का भी अवतार है, आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ये बात अंदर में चलना चाहिए। हमारा घर ब्रह्मांड है अथवा मूल वतन कहो, ब्रह्मांड का अर्थ भी क्लियर निकलता है। जहां अंडे मिसल आत्माएं निवास करती हैं, ब्रह्म तत्व अंडे मिसल आत्माओं के रहने का स्थान है, तो वास्तव में अक्षर एक होना चाहिए। परंतु समझाने के लिए ढेर के ढेर शब्द बनाए दिए हैं, मूल वतन, ब्रह्मांड, परमधाम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ऐसे कहा जाता है ना? वर्ल्ड अक्षर से सिद्ध हो जाता है जरूर बहुत उसमें रहने वाले, और ये दुनिया है साकारी वर्ल्ड, जहां साकारी जीव आत्मा रहती है, निराकारी दुनिया से आत्मा आती है। ऐसे नहीं कि सागर से बुदबुदा निकलता है और वो बुदबुदा फिर हप हो जाता है। सन्यासी क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं कि दुनिया क्या है, सागर से जैसे बुदबुदे तैयार होते हैं, बुलबुले, ऐसे हम आत्माएं भी उस सागर के बुलबुले हैं। माना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम बुदबुदे सागर में मिल जाएंगे, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा अगर सागर में मिल जावे फिर तो उसका विनाश हो गया। तो बाबा कहते हैं ये तो वर्ल्ड है, जैसे साकारी सृष्टि का झाड़ आकाश तत्व के अंश मात्र में है, वैसे हम निराकार आत्माओं का भी झाड़ ब्रह्म तत्व के अंश मात्र में है। यहाँ तो इस शरीर में रहने करने आने जाने के लिए बड़ी जगह चाहिए, बहुत जमीन चाहिए। वहां तो तुम बीज रूप स्टेज में रहते हो, आत्म की स्थिति में रहते हो, वहां जाने आने की तो बात ही नहीं। जमीन भी बहुत छोटी चाहिए, महातत्व में हम आत्मा बहुत थोड़ी जगह पर रहेंगे। जैसे आकाश का अंत नहीं होता है, उड़ार का कोई अंत थोड़ा ही होता है, कोई पार में जा भी नहीं सकते, अंत ही। हमको ब्रह्म को तलाश करने की दरकार ही नहीं पड़ती, ये तो बल चर्चा करते हैं, परंतु तत्व कहां तक है, अंत कभी निकलेगा ही, फिर उनको जानने की तो बात ही नहीं। हम अंत पाए नहीं सकते हैं, कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, कहते हैं उनको तो सारे ड्रामा का राज मालूम है। बात कहते हैं सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। भगवान का भी पार्ट फिक्स है, इसलिए कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में باندھا ہوا ہوں. ڈاکٹر سے چھوٹے یا تھوڑا بڑے جو بھی ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ڈرامہ میں ہم ایکٹر ہیں. اور کون سے ایکٹر ہیں, کب کب کیا کیا پارٹ بجایا, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو ڈرامہ میں ذرا بھی فرق نہیں پڑ سکتا. ڈرامہ کے آدھ مدینت کو جاننے سے تم سب کچھ جان جاویں گے. وہ ہے پارلو کے پرم پتا پرماتما, تو باپ اور بچوں کی پارٹی کی نوند ہے, ہر ایک کو پارٹ ملا ہوا. بات سمجھاتے تو ضرور ہیں, سمجھاتے ہیں تو ضرور جانتے بھی. پتا کہتے ہیں تو بچوں کو ضرور ہونا ہی چاہیے, یہ پوائنٹ بھی ضروری ہے. جبکہ بنا بنایا ڈرامہ ہے تو ضرور رچیتا اور رچنا کا پارٹ دونوں کا نوڈا ہوا ہے, دونوں کا فکس پارٹ جو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو آؤ ہم آپ کو سارے ورلڈ کی ہسٹری جاگرافی بتائیں, ان کو جاننے سے سب ایکٹرز کو جان جائے. بتاؤ ایسا ایکٹر کون ہے, کوئی نہ کوئی ہوں گے جو ڈرامہ کے ایکٹرز کو جانتے ہوں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ جانتا ہو. سنیاسی لوگ ڈرامہ کو نہیں مانتے, وہ تو کہہ دیں گے یہ تمہاری کلپنا ہے. جیسے اس دن جج نے بھی کہا تم کہتے ہو شاستروں میں گپوڑے ہیں. ہاں ضرور گپوڑے تو ہوں گے, جبکہ کوئی ارتھ ہی نہیں نکلتا. پر تو شاستر میں تو جنہوں نے گپوڑے بنائے ہیں وہ گپوڑے ڈالنے والے تو ابھی ہیں ہی نہیں, وہ تو لکھ کر کے چلے گئے. ان گپوڑوں پر منشی چلتے ہیں. چلانے والے تو ہیں ہی نہیں, ہم تو جانتے ہیں. جو ہم جانتے ہیں وہ بات آ کر کے سمجھو, ہم بتا سکتے ہیں انہوں نے سب کچھ کیسے جھوٹ لکھا ہے. کہتے بھی ہیں کہ پرم پتا پرماتما ٹروتھ ہے. جب پرم پتا پرماتما ہی ٹروتھ ہے, گاڈ از ٹروتھ کہا جاتا ہے, تو پھر وہی سچ بتاویں گی نا, باقی تو ساری دنیا جھوٹ ہو گئی نا. بات ان سے پوچھ سکتے ہیں, آگے تھوڑے ہی ہم جانتے تھے. دوسری بات یہ بھی ہے, یہ جو گرو لوگ ہیں ان گروؤں کے بھی ضرور کوئی گرو ہوتے رہے ہوں گے. 28 سے 62 آنے تک ہی سب ہم کہتے ہیں ہمارا منشی گرو کوئی نہیں ہے. آئے تو تھے ضرور, پرنتو اب ہمارا کوئی گرو نہیں ہے. جو ساری سرشتی کا پتت پاون باپ ہے وہی ہمارا سدگرو ہے, اور وہ سدگتی داتا تو ایک ہے. سکھ لوگ بھی کہتے ہیں ایک سدگرو نراکار نرنکار اہنکار نرنکار. ہم وید شاستر پڑھتے تھے تو ہم یہ باتیں نہیں جانتے تھے, گرو کو مانتے تھے, ابھی نہیں مانتے. سدگتی داتا گرو ملا ہے, وہ ہم کو سمجھاتے ہیں تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. تو بابا گیان کا ساگر ہے, آنند کا ساگر ہے, وہ بیج روپ ہے. وہ لوگ اپنے گرو کی اتنی مہیما نہیں کریں گے, وہ تو گیتا کا بھگوان ہی کہتے ہیں کہ میں ساری منشیہ سرشتی کا بیج روپ ہوں. ساری منشیہ سرشتی کا بیج روپ ہوں, منشیہ سرشتی کا بیج روپ نراکار ہے یا نراکار ساکار کا میل ہے؟ نراکار ساکار کا ضرور میل ہے. ایسے نہیں گیتا کا بھگوان نراکار ہے, نراکار ہے تو وہ گیتا گیان کیسے سناوے گا؟ ضرور گیتا گیان سنانے والا ساکار میں آتا ہے, مکھ سے گیان سناتا ہے, تو مکھ چاہیے نا, ساکار تو ضرور ہونا چاہیے. وہ تو کہہ دیتے ہیں گیتا کا بھگوان کرشن نہیں ہو سکتا, گیتا کا بھگوان نراکار شیو ہے. شیو جیوتی بندو کا چتر بنائے دیں گے اور کنٹراسٹ میں دوسری طرف کرشن کا ساکار چتر بنائے دیں گے, اس سے بات سدھ ہو جاتی ہے کیا کہ گیتا کا بھگوان کرشن نہیں ہے؟ اور ایک طرف کہتے ہیں کرشن ہی برہما کی آتما ہے, ब्रह्मा किसकी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा। फिर ये बात मानते नहीं कि ब्रह्मा और कृष्ण गीता का साकार भगवान नहीं हो सकता। जब कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है तो कृष्ण सतयुग का है या संगम युग का? कहाँ का कृष्ण है? संगम युग का ही हो सकता है। और संगम युग में जो कृष्ण है वो तो ब्रह्मा के रूप में है। कृष्ण बच्चे के रूप में तो जन्म लेता नहीं है, तो ब्रह्मा गीता का साकार भगवान है क्या? वो तो नहीं हो सकता। कृष्ण के लिए कहें तो भी ठीक है, परंतु कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। इन ब्रह्मा के लिए कहें परंतु उन द्वारा तो सच्ची रचते हैं। इन ब्रह्मा को तो बीज रूप कह नहीं सकते। वो रचयिता है ब्रह्मा या रचना है? जो रचना है वो बीज कैसे? बीज का तो वो बीज तो स्वयं ही बाप होता है, बीज को बाप कहा जाता है। तो ब्रह्मा को भी बीज रूप नहीं कह सकते। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, जड़ कहेंगे या बीज कहेंगे? आधार ही कहेंगे। तो आकार परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं जिस तन में आता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। क्या कहा? जिस तन में भी आऊंगा उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। सन्यासियों का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा, अलग अलग होगा। अब ये कोई 5 वर्ष में थोड़े ही निकलते हैं, थोड़ा बड़ा होने के बाद समय आने के बाद ही निकलते हैं। कई अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनको पैसे बहुत मिलते हैं, पैसे के लालच में ही ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सर तुम बच्चे ही हो जो कहते हो हमारा एक ही बाप टीचर सदगुरु है, हम साकार के लिए तो भगवान कहते नहीं है। वो भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा साकार है या निराकार है? ब्रह्मा का कोई फोटो ऐसे देखा जो निराकारी स्टेज वाला हो? एक भी फोटो निराकारी स्टेज वाला नहीं है। और बाप भगवान तो निराकार होना चाहिए। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ मुकर्रर रूप से, वही भगवान बाप रचयिता का पाठधारी सारी सृष्टि का बीज रूप भगवान है। उनका कोई भी गुरु नहीं हो सकता, उनको सिखाने वाला, उनकी सदगति करने वाला कोई भी साकार में गुरु नहीं हो सकता। उनको सिखाने वाला कोई टीचर भी नहीं हो सकता। किसको? जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से प्रकट होता हूँ, प्रत्यक्ष होता हूँ, उस स्वरूप को कोई भी गुरु भी नहीं और कोई भी पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं हो सकता। उनको रचने वाला भी कोई नहीं हो सकता। वो तो स्वयं ही रचयिता है। हम उनसे सुनकर के फिर आपको सुनाते। ये ब्रह्मा का चित्र देख करके समझते हैं कि अपन को भगवान कृष्ण आदि कहलाते हैं। चित्र से भी कोई समझ में सके? चित्र का ऑक्यूपेशन बायोग्राफी पूरी होनी चाहिए। अभी बहुत कुछ लिखना भी है। दिलवाला मंदिर की भी बहुत तारीफ लिखनी है। ये दिलवाला सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। ये सारी संगठन का यादगार है। क्या? दिलवाड़ा मंदिर। उनकी महिमा बहुत निकलनी है। हमारी क्रिएशन एडिशन तो चलती रहती है, इसलिए लिखते भी रहते हैं किताब ऐसा बनाओ जो हम कब भी ऐड कर सके। अब तुम बच्चियां जानती हो रत्नागर जादूगर मुरलीधर कोई कृष्ण नहीं है, परंतु संगम समय होने के कारण शिव और कृष्ण को एक कर दिया। गीता से पैदा हुआ कृष्ण बच्चा, गीता तो माता हो गई और गीता ने हमको राजधानी दी है। राजा ही भगवान ही दे सकते हैं। तो मुख्य बात है कि ये गीता का भगवान ही भारत को वर्षा देते हैं, सन्यासी थोड़े ही देते हैं। इन सन्यासियों का अभी और ही रुतबा बढ़ता जाता है जब भगवान बाप आते हैं। कोई एक को पूछते हैं तो बस वो बच्चा बना करके जो कुछ भी कहे सो कह देते हैं। ज्ञान को तो जैसे जानते ही नहीं। साधुओं को देखो कैसे गुलजारीलाल नंदा को हाथ कर लिया। वो बड़ा है तो इनको बचाते रहते हैं। तुम भी कोई को पूछो, साधुओं ने ही भारत को द्रुपति को पहुंचाया है। बल तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर केस भी होंगे और केस हो तो वो अच्छा ही है, अखबारों में धमाधम मच जाएगी। परंतु ताकत नहीं है बच्चों में जो कोर्ट में ये बातें सामने रखें। पहले तो वकील करना पड़े। जो कोई वकील अच्छा हिम्मत वाला हो तो केस सामने रखे, पॉइंट की धारणा दी। इसमें तो एक जगदीश ही तीखा है परंतु है बहुत डरपोक। क्या कहा हजन, तो ताकत नहीं आई है। इसमें ज्ञान की एक लकीर है। बच्चे बच्चे कहकर के बोल सकते हैं, जैसे बाबा बच्चे बच्चे कहकर के बात करते हैं। कोई तो बताते हैं तो कहते हैं कि मम्मा को मिलना चाहिए, मम्मा बिठा कर बच्चे बच्चे कहकर के समझावे। नाम ही लगा हुआ है जगदम्बा, तो जगदम्बा मिल सकती है। 28 से 62 वाणी का चौथा, तो बच्चों को पहले पहले माँ मिलती है फिर बाप मिलता है। पहले जिज्ञासु को अटेंड करने वाले बहुत अच्छे चाहिए। क्या कहा, बच्चों को पहले पहले कौन मिलता है, माँ मिलती है कि बाप मिलता है? तो माँ मिली या नहीं, कहाँ मिली माँ, कहाँ मिली है? क्या हुआ, एडवांस में कहाँ है? कोई को पता नहीं, तो फिर मिली कहाँ? पहले बच्चों को माँ मिलती है फिर बाप मिलता है, तो बाप नहीं मिला अभी है? ये कैसे बाप पहले कैसे मिल गया है? माँ कहाँ मिली? माँ ब्रह्मा के तन में, तो मर गई क्या है? बाप विदुर हो गया क्या? हाँ दोनों है? नहीं मिला न मिला बराबर हो जाता है। जब आज मिला और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं बच्चे, इसलिए पक्का कहेंगे अभी नहीं मिला। पहले कौन मिलेगी पक्का? माँ मिलेगी। माँ के द्वारा राजधानी स्थापन होनी है, माँ के द्वारा स्थापन गाई हुई है। पहले माता गुरु चाहिए, पहले जिज्ञासु को अटेंड करने वाले बहुत अच्छे चाहिए। जैसे गाय मनुष्य को सिंह पर उठाती है, तो तुम भी ज्ञान गाय हो, एकदम ज्ञान को सिंह पर उठाओ। तुमको ये भी पता नहीं है आत्माओं के बाप का नाम क्या है? उनसे पूछो। तुमको ये भी पता नहीं है कि आत्माओं के बाप का नाम क्या है? दुनिया में कोई से पूछेंगे तो बता देंगे? وہ تو نہیں بتا رہے. اس بیعت کے باپ کو تم یاد ہی نہیں کرتے ہو. یاد تو تب کرو جب تمہیں پتا ہو. تم رچنا کو بیٹھ یاد کرتے ہو. کون ہے رچنا؟ کرشن ہے رچنا. کہتے بھی ہے کرشن نارائن واسودیو. کرشن بھی سولہ کلا سمپورن, نارائن بھی سولہ کلا سمپورن, تو وہ تو دونوں ایک ہی ہو گئے. تو نارائن پہلے یا نر پہلے؟ نر پہلے. نر کو نارائن بنایا کس نے؟ ضرور بنانے والا کوئی دوسرا چاہیے نا. تو جو نر کو نارائن بنانے والا ہے وہی رچتا ہے. تم تو رچنا کو یاد کرتے ہو. رچنا سے تھوڑی ورثہ ملے گا. یہ کرشن تو رچنا ہے. کرشن رچنا اس لیے کرشن کو بچے کے روپ میں یاد کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, مندروں میں بٹھاتے ہیں. بچہ تو رچنا ٹھہرا نا. اب تم تو نہیں کہیں گے. اتنی ہمت چاہیے بات کرنے. بابا بچے بچے کہیں گے تو ماں باپ ہی کہہ سکتے ہیں. تو پوچھنا چاہیے یکتی سے کہ تم جگدمبا کا نام تم نے کب سنا ہے, وہ کون ہے؟ ارے کس کے تو بچے ہوں گے. پھر بیٹھ کر کے سمجھانا چاہیے. یہ سمجھ تب آتی ہے جب وچار ساگر منتھن چلے گا. نہیں تو وہ سمجھ آئے گی ہی نہیں. سویرے اٹھ کر کے وچار ساگر منتھن کرنا. اب یکتیاں آئی نہیں ہیں اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اب تک ڈراما میں ایسا پارٹ ہی کسی کا نہیں ہے. کب تک؟ 62 کی وانی ہے نا. 62 تک کوئی نے منن چنتن منتھن کرنا شروع ہی نہیں کیا ان باتوں پر. نہیں تو وہ سمجھ آئے گی نہیں. اگر وچار ساگر منتھن نہیں کریں گے, سویر اٹھ کر کے وچار ساگر منتھن کرو. ابھی تک تو شکتی دھارن ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ٹھیک سے یاد نہیں کرتے ہیں. پورا یوگ نہیں ہوگا تو تیر ہی نہیں لگے گا, وانی ہی نہیں کھلے گی. کیا کہا؟ دوسروں کو تیر کب لگتا ہے اور اپنا بھی منن چنتن منتھن کب چلتا ہے؟ کیا کریں جو اپنا بھی منن چنتن منتھن چلے اور جن کو سنائے ان کو بھی تیر لگ جائے, گائل ہو جائیں. کیا کریں؟ بابا کو جتنا یاد کریں گے, بندروپی اسٹیج میں جتنا ٹکیں گے, آرتھک استھتی میں جتنا رہیں گے, آتمک استھتی میں جتنا رہیں گے اتنا من سوکشم بنے گا. من جتنا سوکشم بنے گا اتنا منن چنتن منتھن کی گہرائی میں, گیان کی گہرائی میں بھی جا سکیں گے. اور تمہاری وانی بھی کھل جائے گی. بابا سمجھ جاتے ہیں کس کا یوگ ٹھیک ہے. کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ ہاں جب سروس میں جاتے ہیں تو ان کی وانی کھلی ہوئی ہوتی ہے. وانی بھی کھل جاتی ہے, دوسروں کو تیر بھی اچھا لگتا ہے اور منن چنتن منتھن کی نئی نئی باتیں بھی, نئے نئے پوائنٹس بھی نکالتے ہیں. بابا بھی بہتوں کو مدد کرتے ہیں. کوئی کوئی بچے سچ بتلاتے ہیں, میرے میں ایسی مرلی چلانے کی طاقت ہی نہیں, پتا نہیں میرے سے کس نے مرلی چلائی. سننے والے بھی فیل کرتے ہیں. تو بابا بہت بچوں کو مدد کرتے ہیں. کئی بچے بھی سمجھتے ہیں ہم نے اپنی ہوشیاری دکھائی, ان کو دیوان آ جاتا ہے, بابا کو بھول جاتا ہے. بابا پوائنٹس تو بہت دیتے رہتے ہیں. دھارنا نہیں ہوتی ہے کیونکہ یوگ میں نہیں رہتے ہیں. بابا کی یاد میں رہو تو کب مرجائش نہیں آئے گی. ساجن اتوا پتا کوئی تھم کم تھوڑے ہی ہے. باپ سے بڑا بھاری خزانہ ملتا ہے. تو تم سمجھا سکتے ہو سنیاسیوں کا بھی ڈراما میں پارٹ ہے, باقی وہ سدگتی نہیں کر سکتے. خود سادھنا کرتے رہتے ہیں, سدگتی کیا کریں گے؟ سدگتی تو وہی کر سکتا ہے جس کی خود سادھنا کرنے کی درکار ہی نہ ہو, جس کی اندریاں خود ہی سدی ہوئی ہوں. शिव हम कहते हैं तो फिर साधु नाम तो नहीं होना चाहिए। साधु किसे कहा जाता है? जो साधना करे वो साधु, और तुम कहते हो अपन को शिव हम, तो फिर साधना क्यों करते हैं? जब शिव हो, भगवान हो, फिर साधना करने की क्या दरकार? मैं शिव हूँ, फिर साधना तुम किसकी करते हो? साधना अथवा भक्ति कोई से मिलने की भी करनी होती है तो पॉइंट तो तुमको बहुत देते हैं, उनको सुनाने में हिम्मत चाहिए, अच्छी रीति आठ ही उठावेंगे, फिर 108 भी हैं, अच्छी रीति आठ नंबर वालों की ताकत काम आवेगी। नाम तो सुनते रहते हो, कौन कौन है, कौन कौन है, हैं? कुमार का है तो शरीर छोड़ दिया, तो माला में आने का टाइम ही नहीं आ पाया, फिर हाँ बाप भद्द और बेहद दोनों में बोलते हैं, वो तो नाम का कुमार का शब्द हुआ है, लेकिन वास्तव में कुमार का माने जो जब से ज्ञान में आई तब से लेकर अंत तक कुमारी ही जीवन रहे। गंगे है, मनमोहिनी है, प्यार से बाबा उनको मोमली कहते थे। एक दिन वो भी आवेगा तो सभी बच्चे एक जगह मिलेंगे। कौन कौन है? मोमली बच्ची, गंगे दादी, कुमार का दादी, ये सब बच्चे एक जगह मिलेंगे और सबसे खुश खैरियत पूछेंगे। ब्राह्मण कुलभूषण वाले आपस में जरूर मिलने चाहिए, अनन्य बच्चों का मिलन होना चाहिए तो मालूम पड़े। मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो यहाँ भी अनन्य बच्चों की कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। फिर हरेक बता देंगे हम अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या सेवा करते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट है परंतु ये गुप्त है। मकान बन जाएगा तो सभी मनुष्य अनन्य को बुला लेंगे, जो सेंटर चलाने वाले आवेंगे। अभी तो बहुतों का आपस में मतभेद होता है, क्या कहा, क्यों मतभेद होता है? मतभेद क्यों होता है, आपस में झगड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि तो बाप को भूल जाते हैं, बाबा के बच्चे को माया छोड़ती नहीं है। ये भी ग्रामीण में नूंद है, ब्राह्मण कुल में मतभेद न हो फिर तो रेल बहुत तीखी चलेगी। क्या, कोई मतभेद न हो फिर ये संकल्पों की रेल बहुत तीखी चलेगी, लेकिन मतभेद हो जाता है तो आपस के मतभेद में ही बुद्धि चलती रहती है, मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता ही नहीं। देखा जाता है रेल को बहुत धीरे धीरे चलना है। अब अजन पैसेंजर गाड़ी है, फिर आगे चल करके एक्सप्रेस गाड़ी भी होगी, फिर मेल ट्रेन हो जाएगी। धीरे धीरे तुम वृद्धि को पाते जाओगे, तो तुम बच्चों ने एक दो मुख्य पॉइंट सिद्ध कर दी तो कमाल हो जाएगी। नास्तिक नास्तिक वाली पॉइंट भी जरूरी है, वेद शास्त्र उत्पन्न कराने की भक्ति, सभी का नाम डालो, वेद शास्त्र कुरान बाइबल सभी सुनते सुनते मनुष्य नास्तिक बन गए। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है तो नास्तिक ठहरे ना, सर्वव्यापी है, सब में भगवान है, तो क्या सबके ऊपर आस्था है? आस्था एक के ऊपर होगी, एक के लिए आस्तिक कहा जाएगा, या इनके ऊपर भी आस्था है, इनके ऊपर सारी दुनिया के ऊपर आस्था हो सकती है? ऐसे तो नहीं हो सकता, सब नास्तिक, इसमें डरने की बात नहीं। भले कोई भी तुम्हारे ऊपर केस कर दे, तुम डरो मत, तुम सिद्ध करके बताओ कि इन शास्त्रों ने कैसे नास्तिक बनाया। हाँ, बहादुर सिपाही बीड़ा उठाने वाला हो जो कहे बाबा हम सिद्ध करके बता दे, तो तुमको बहुत उजूरा मिलेगा, तुम्हारी बड़ी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, जो कल पहले किया है वो अभी करना। ललकार तो आगे चल के करेंगे ना, बाप दादा भी ललकार करेंगे, बच्चे कुछ न कुछ करके दिखाओ। भिखारियों में भी नंबरवार होते हैं, कोई तीर कमान चलाते हैं, उसी तरह शिकारियों में भी नंबरवार होते हैं, कोई बंदूक चलाते हैं। फिर उनकी आपस में शर्त रहती है, उड़ते हुए पंखी को तीर लगा दे और पंखी भी एक ही होगा, ऐसा तीर जला देंगे जो उनके पेट में लग जाएगा। एक पंखी उड़ेगा तो एक को ही लगेगा, फिर जिसका तीर लगेगा उनको इनाम देंगे। 28-62 की वाणी का 5वां पेज, कोई एक बंदूक से 5-6 पंछी भी मार देते हैं, तुम भी अभी छोटे छोटे शिकार करते हो, पर सन्यासियों का शिकार करेंगे। भगवान वाच है, इन गुरु गोसाइयों ने तुमको बहुत दुर्बल में फंसाया। पहले मुख्य बात है गीता की, कोई कोई गुस्सा करेंगे, गाली भी देंगे, वो तो तुमको सहन करना ही। तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए करते हो, माया पर जीत पाए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। वो सिपाही बादशाही के लिए लड़ते हैं, लड़ाई वालों पर कोई पाप नहीं लगता है, तो पाप राजाओं पर लगता है, क्योंकि वो डायरेक्शन देते हैं। चोर को जो राय देते हैं तुम ऐसे ऐसे करो, तो उनको भी सजा मिल जाती है। चोरी करने वाले को तो बचाना चाहिए ना, क्या ऐसा काम ना करो, ऐसे नहीं देखते रहे बल करते रहे, बुरे काम में राय भी देते, उसका पाप बहुत लगता है। क्या कहा, बुरा काम करने वालों पर इतना पाप नहीं लगता है जितना राय देने वालों पर पाप लगता है। तुम बच्चों को पुण्यात्मा बनना है, माया से बड़ी संभाल रखनी पड़ती है। ज्ञान में जो एक्यूरेट होगा तो वो बहुत तीखा दौड़ेगा, हर बात में पूछना चाहिए बाबा इसको पाप कहा जाए या पुण्य कहा जाए। समझाया जाता है 13-14 वर्ष में जो पाप किया है उसका पाप दाखिल नहीं होता, फिर बाद में बालिग होने से पाप रूद हो जाते हैं। बाप से पूछो हमने ये पाप किए हुए हैं, बाबा इनको पाप कहें तो शंका मिटाए लेनी चाहिए, लाइन बुद्धि की क्लियर होनी चाहिए। बाबा सभी खोल करके बताते हैं, तो बच्चे को भी लिखना चाहिए। नई नई बीमारी आवेगी, कहेंगे ज्ञान में आने से दिवाला मारा, दुकान भी हमारी ठंडी हो गई, फिर संकल्प में गुटखा खाते रहेंगे कि जब से इस ज्ञान में आए तब से ऐसा होता है। बाबा कहते हैं संकल्प आए तो पूछो, बाकी बहुत मौज में रखो। क्रिएशन को संभालना भी है, बाबा से वर्षा भी लेना है, एक दो को सावधान भी करना है, उनके ऊपर तरस आना चाहिए। बाकी गालियां तो बहुत देंगे, इनको भी गाली मिली ना, अब कृष्ण को थोड़ा ही कोई गाली दे सकता है, वो तो सत्युग का प्रिंस, वहां ऐसे बदमाश आदि कोई होते ही नहीं जो गालियां मिले। ये तो है ही बदमाशों की दुनिया, अपने पास अक्षर आदि बहुत गुलगुल मीठे मीठे निकलने चाहिए। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, उन्नति के लिए कृपा आदि मांगना भूल है, यहाँ तो पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है, सच्चा सच्चा व्यास बनना है। सुखदेव के बच्चे तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ही व्यास होते हैं, यहाँ तो सभी शुद्ध हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, बस ऐसा कहने मात्र से खेद ही खलास हो गया। बस एक ही बात सिद्ध करके बताओ, अभी समय तो बहुत बचा हुआ है, जाने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छा ओम शांति।